नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों पर नक्सल विरोधी अभियान में 31 माओवादी मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल सीधी शांतिवार्ता के लिए कल तुर्की में मिलेंगे। सोमालिया में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 17 लोगों की मौत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिल्ली ने जिम्नास्टिक में शानदार प्रदर्शन के साथ समापन किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस इकाई को प्रतिमा 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 37 अरब रूपये के निवेश वाली इस इकाई की डिजाइन आउटपुट क्षमता 3,60,00,000 यूनिट प्रतिमाह है।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5ों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने में आगे बढ़ रहा है।
अब तक 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिजाइन की टेक्नोलॉजीज होती है वो सब वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया, माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स, अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है।
ऑपरेशन सिंदूर पर श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश के सशस्त्र बलों की अजय भूमिका और निर्णायक नेतृत्व का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान प्रौद्योगिकी ने बड़ी भूमिका निभाई।
साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित के मंत्रिमंडल के निर्णय से विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार भी सृजित होंगे। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां जारी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए सेमीकंडक्टर इकाई की स्वीकृति देश को प्रौद्योगिकी का शक्ति भंडार बनाने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा कि इससे देश की नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत ने विश्व स्तर पर सबसे तेज 5G सेवा का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पेमासानी ने कहा कि 2 वर्षों में देश भर में 4,70,000 से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 5G क्रांति देखी है। डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि भारत ने देश की 80% आबादी तक 5G कवरेज का विस्तार किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AI या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियान में 16 महिला माओवादी सहित 31 माओवादी मारे गए हैं। बीजापुर में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने यह जानकारी दी। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ी है।
सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले चार महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि ये अभियान करीब 21 दिनों तक बीजापुर जिले में तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यह माओवादी विरोधी ऑपरेशन बीते 21 अप्रैल से 11 मई तक चलाया गया। इस दौरान कुल 21 मुठभेड़े हुई। सुरक्षा बलों ने माओवादियों की सेल्फ लोडिंग राइफल, सेमी ऑटोमेटिक हथियारों सहित कुल 35 हथियार और 450 IED मौके से बरामद की हैं। इसके अलावा माओवादियों के 214 बंकर और ठिकाने नष्ट किए गए तथा करीब 12,000 किलो राशन भी बरामद किया गया। इस ऑपरेशन में जो 31 माओवादी मारे गए हैं, उनमें से अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है। इन पर 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष 31 मार्च तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प में इस अभियान को ऐतिहासिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि करेगुट्टा पहाड़ी प्रमुख नक्सल संगठनों का एकीकृत मुख्यालय थी। ये प्रशिक्षण स्थल नक्सल रणनीति योजना और हथियार निर्माण का केंद्र भी थी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कल शुरू की गई 11 दिन की यात्रा का उद्देश्य नागरिकों, समुदायों और क्षेत्रों में राष्ट्रीय गौरव तथा एकता की भावना पैदा करना है। लद्दाख के लेह में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में तिरंगा के लिए हुई बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा शौर्य यात्रा को रवाना किया। महाराष्ट्र में मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई जिले में व्यापारी संघ ने रैली का आयोजन किया। बिहार की राजधानी पटना में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में एक शक्तिशाली बदलाव को चिन्हित किया है। ये सिर्फ एक और सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ये दुनिया को स्पष्ट संदेश था कि भारत सीमा पार हमलों के सामने चुप नहीं बैठेगा। एक रिपोर्ट।
प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक टॉम कूपर ने भारत के हवाई हमलों को एक स्पष्ट जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीय प्रतिक्रिया देने में असमर्थता भारत के रणनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाने के बाद संघर्ष विराम के लिए संपर्क किया था। आधुनिक युद्ध संस्थान में शहरी युद्ध अध्ययन के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने रणनीतिक संयम और दृढ़ता दिखाने में भारत के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से लड़ने के भारत की ताकत को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता दिखाई है। इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य जेनिफर जेंग ने भी भारत के रणनीतिक हमलों और पाकिस्तान की हार का विस्तृत विवरण साझा किया है। सुश्री जेंग ने कहा कि भारत ने कई सटीक और शक्तिशाली हमले किए। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है। JNU ने यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में JNU ने कहा कि वो देश के साथ खड़ा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पहलगाम आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के भारतीय सेना के एक जवान के दावे के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि वीडियो में दिख रहा जवान भगोड़ा है और इस वर्ष मार्च से ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारियों BLO को जल्द ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे सुचारू रूप से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सकें। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बूथ स्तर के अधिकारियों, निरीक्षकों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए 2 दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तुर्की में कल यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल सीधी वार्ता के लिए मिलेंगे। दोनों देश शांति वार्ता को बहाल करने के करीब हैं। दोनों देशों के बीच आमने सामने की चर्चा 3 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। रूस की ओर से सीधी बातचीत में प्रस्ताव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल तुर्की में बातचीत करने का अनुरोध किया था। सोमालिया में आई अचानक बाढ़ के कारण 17 लोग मारे गए और 84,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बाढ़ से बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान का पता चला है और प्रभावित लोगों को सहायता की तत्काल आवश्यकता है। सोमालिया की लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 182 अंक बढ़कर 81,331 पर बंद हुआ। निफ्टी 89 अंक बढ़कर 24,667 पर दर्ज हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिल्ली ने जिम्नास्टिक में शानदार प्रदर्शन के साथ समापन किया। पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले, हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट।
मार्शल आर्ट की थांग ताकि अलग अलग स्पर्धाओं में मणिपुर ने बालक और बालिका दोनों वर्ग में 3 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक जीतकर इन खेलों में अपना वर्चस्व दिखाया। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर समापन से ठीक पहले अपने राज्य का भी खाता खोला। मुक्केबाजी में सैमुअल जाडेंग ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपने राज्य मिजोरम के लिए खाता खोला। वहीं सिक्किम के मुक्केबाज रिवास राय ने 65 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल कर अपने राज्य के लिए पदकों का सूखा समाप्त किया। मुक्केबाजी में हरियाणा ने बालकों के वर्ग में 7 स्वर्ण के साथ राज्य ने कुल सोने के 9 तमगे जीते। बिहार ने मार्शल आर्ट थांगता में 2 स्वर्ण और स्टीपल चेज में 1 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में बड़ा इजाफा किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इंडिया, इंडिया, खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया।
मालविका बंसोड, आकर्षी कश्यप और उन्नति हुड्डा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली ने भी अंतिम 16 में प्रवेश किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर नक्सल विरोधी अभियान में 31 माओवादी मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल सीधी वार्ता के लिए कल तुर्की में मिलेंगे। सोमालिया में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 17 लोगों की मौत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिल्ली ने जिम्नास्टिक में शानदार प्रदर्शन के साथ समापन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।